हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
आज जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था इतने सालों से, वो दिन आ गया है। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज इनका नासिक मदन गोपाल मंदिर में आगमन। और मैं जो इतने सालों से कोशिश कर रहा था कि जिस दिन से हमारे राधा मदन गोपाल जी इंस्टॉल हुए हैं कि महाराज श्री आए, और आज वो दिन आया। और इत्तेफाकन ये दिन भी ऐसा, मैंने जब इनसे पूछा हाल ही में कि आप मुंबई की ओर कब आ रहे हो और नासिक आना कब हो सकता है, तो उन्होंने खुद से कहा कि एक ही दिन मेरे लिए फ्री है नवंबर के महीने में, और वो है ये बुधवार का दिन। और मैं इसे इत्तेफाकन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा गीतामृत बुधवार का कार्यक्रम, इसकी प्रेरणा मुझे महाराज श्री से मिली। बहुत बहुत वर्ष पहले, मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले, जब महाराज श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पर बुधवार के कार्यक्रम इन्होंने ही वहाँ शुरू किए थे। और मुझे याद है ऐसे ऐसे वहाँ पर लोग आकर भक्त बने। वहाँ पर मैं जब अटेंड किया करता था, तब तो मैं ब्रह्मचारी नहीं था, तो बहुत से जो ऑडियंस में, उनसे जब मैं बात करता था तो वो कहते थे कि बम्बई की दौड़ धूप में शाम को जब वो आते थे 7:30-8 बजे इनका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो केवल इनके चेहरे को देखकर उनका पूरा स्ट्रेस चला जाता था, और वाणी को सुनकर तो फिर उनको जाने की इच्छा ही नहीं होती थी वहां से। तो इनका परिचय अगर हम प्रारंभ करें तो पूरा आज का गीतामृत का सेमिनार एक देना होगा। भक्ति रसामृत महाराज इस्कॉन में ज्वाइन होने से पहले उन्होंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से BE किया, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से MBA किया, और पिछले 25-30 साल से वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए बहुत ही गहरे तरीके से, और बहुत बड़े पैमाने पर वो अपनी सेवा दे रहे हैं इस्कॉन को। इस्कॉन वृंदावन के टेंपल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इस्कॉन वृंदावन में हम लोग यात्रा में जाते हैं वो एक अलग स्टोरी होती है, और इस्कॉन वृंदावन को मैनेज करना वो एक अलग स्टोरी होती है। एक भक्त मुझे बता रहे थे कि भक्ति रसामृत महाराज जब इस्कॉन वृंदावन के टेंपल प्रेसिडेंट, तो उस समय माहौल वहाँ का इस प्रकार का था कि जैसे, उन्होंने एक उदाहरण, बहुत उपयुक्त उदाहरण दिया, अभी भी याद है मुझे, उन्होंने कहा कि भक्ति रसामृत महाराज जैसे सौम्य साधु वहाँ के मंदिर को जो मैनेज कर रहे हैं, वो किस प्रकार से है जैसे कि किसी के मुख में बहुत ही नोकीले जो दांत होते हैं उसके बीच में बिना हड्डी की जीभ। Amongst the sharp teeth, the soft tongue। तो महाराज श्री का उस प्रकार से उदाहरण देते, और उन्होंने जिस तरीके से इस्कॉन वृंदावन में बदलाव लाए और काया पलट उनकी की वहाँ पर, मैं खुद वहाँ पर 1 साल रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो वहाँ पर इनके मैनेजमेंट में इन्होंने इतने सुंदर बदलाव लाए, वो आज दिन तक कोई नहीं ला सका। और इनकी वाणी, यही इनका परिचय है। कितने भक्त, मैं जब एयरफोर्स में था तो मेरे लॉकर में इनका फोटो हुआ करता था, तो एक व्यक्ति ने इनका फोटो देखा और उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो मैंने दिखाया कि ये रूम पर जितने तुमने सिनेमा के स्टार्स लगा रखे हैं ये तुम्हारे हीरो होंगे, मेरे हीरो ये हैं। और ये बात सच है, मैं अपने हाल ही के मंथन रिट्रीट में कह रहा था कि जो मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ, इतने सालों से जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस हरे कृष्ण आंदोलन में सेवा करने की एज अ ब्रह्मचारी, तो ये इनके ही बदौलत है, जो भी कुछ प्रेरणा मुझे मिली अपने जीवन को समर्पण करने की, वो महाराज श्री से ही मिली है, और आगे भी चलते हुए पूरे जीवन भर नित्य काल तक मुझे जो भी प्रेरणा, मैं इनसे ही लेना चाहूँगा। तो आइए हम सब स्वागत करें भक्ति रसामृत महाराज का नासिक मंदिर में 3 बार जोर से। और आज का जो प्रवचन का शीर्षक है, चैतन्य शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक, ये विशेष रूप से मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि जो सबसे पहला लेक्चर मैंने इनका सुना, सबसे पहले तो 1-to-1 इन्होंने मुझे आधे घंटे प्रीचिंग किया, उसके पश्चात फिर मैंने निश्चय कर लिया था कि मैंने मुझे अपना जीवन समर्पित करना है इनकी तरह। परंतु जो फॉर्मल लेक्चर मैंने सबसे पहला इस्कॉन का सुना, जो उनका उस समय वो दयामृत प्रभु थे, तो वो था चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर। तो 20 साल पहले की याद ताज़ा करने के लिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक आज हम फिर से सुनना चाहेंगे इनके मुखारविंद से। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। ऐसे परिचय देने के बाद प्रवचन देना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आशाएं इतनी बढ़ जाती है, फिर श्रोतागण सोचते हैं कि पता नहीं कहां गोलोक वृंदावन से ही कोई प्रवचन हो जाएगा। तो ऐसे भक्तों की आदत होती है अन्यों की प्रशंसा करना, इसलिए जो भी आपने सुना बहुत गंभीरता से नहीं लीजिए। फिर भी हाँ, शिक्षाष्टकम प्रभु के प्रति विशेष प्रेम रहा है कई वर्षों से, उनके सारे परिवार से, उनके भाई भी थे, और कई महीनों से बल्कि वर्षों से वो आग्रह कर रहे थे कि जरा नासिक आना चाहिए। गोविंदानंद प्रभु भी बहुत समय आके आग्रह कर रहे थे आना चाहिए आपको, तो कह दिया चलिए। मुझे भी बहुत बड़ी इच्छा थी, यहाँ सुना था कि आपका नया मंदिर हुआ है और आकर देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर आए हुए हैं, इतना एक सुंदर भव्य मंदिर है, सुंदर विग्रह हैं, तो मेरे लिए वास्तव में सौभाग्य की बात है। तो शिक्षाष्टकम प्रभु ने मुझसे कहा था कि मुझे शिक्षाष्टकम के ऊपर प्रवचन देना चाहिए, तो अब शायद मेरी बारी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर प्रवचन देंगे, प्रयास करेंगे। तो इसके पहले मैं एक हरि नाम के संबंध में एक भजन गाना चाहता हूँ, क्योंकि चैतन्य शिक्षाष्टकम जो है ये भगवान के नामों के ऊपर आधारित है। श्री हरेर नामाष्टक, शायद आप में से अनेक भक्तों ने ये भजन सुना होगा पहले। हाँ, आगे। तो आप में से कितने भक्तों ने ये हरे नामाष्टकम ये सुना है पहले, हाथ ऊपर कीजिए। अनेकों ने नहीं सुना है, तो ठीक है। इसके रचयिता कौन है इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है, परंतु जो भी हों वो बहुत परम वैष्णवी होंगे जिन्होंने ऐसे गीत लिखा है। और इसका अंतिम, इसकी अंतिम पंक्ति लाइन यही है, हरेर नाम एव केवलम। ये श्लोक तो आपने सुना है अवश्य, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ये हरे नाम एव केवलम, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हरि नाम ही सर्वस्व है हमारे लिए, केवल हरि नाम ही हमारे जीवन में सफलता का और यश का एक मार्ग है, बस दूसरा कोई उपाय हमारे लिए नहीं है। मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम पावनं पावनेभ्यो हरेर्नामेव केवलम् पावनं पावनेभ्यो हरे नामेव केवलम् आब्रह्मास्तम्भपर्यन्तं सर्वमायामयं जगत् आब्रह्मास्तम्भपर्यन्तं सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् हरे नामेव केवलम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामेव केवलम् सगुरुः सपिता चापि सामाता बान्धवोऽपि सः सगुरुः सपिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम् शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम्
विश्वास नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। विश्वास नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। कीर्तनीय सदा मतो बाल्यात् हरे नाम केवलम्। कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरे नाम केवलम्। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः। गायन्ति भक्तिभावेन हरे नामैव केवलम्। गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः। अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः। काचायं विस्मृतं रत्न हरे नामैव केवलम्। काचायं विस्मृतं रत्न हरे नामैव केवलम्। दीयतां कर्णो नियतां वाचः। Thank you. दियताम दियताम करो नियताम नियताम वाचः दियताम दियताम नित्यं हरेर्नामेव केवलम् दियताम दियताम नित्यं हरेर्नामेव केवलम् तृणकृत्य जगत्सर्वं राजते सकल परम् तृणकृत्य जगत्सर्वं राजते सकल परम् चिदानन्दमयं शुद्धं हरे नामेव केवलम् चिदानन्दमयं शुद्धं हरे नामेव केवलम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
अष्टकं की जय संक्षेप में इस भजन का अर्थ मैं बताना चाहूंगा कृपया फिर से पहले श्लोक से एक एक करके करें मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरेर्नामैव केवलम मधुर वस्तुओं से में से सबसे मधुर वस्तु पावन वस्तुओं में से सबसे पावन वस्तु
मंगल वस्तुओं में से सबसे मंगल वस्तु केवल ये हरि नाम ही है, हरे नाम एव केवलम। आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा जी से लेकर एक साधारण घास के तिनके तक क्या है, सर्व माया मयम जगत, सब कुछ माया ही माया है, ये माया का जगत है। परंतु इस माया के जगत में भी एक सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एव केवलम, और वो है हरि का नाम। हरि का नाम या राम का नाम केवल उस समय सत्य नहीं होता है जब स्मशान में जा रहे होते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, केवल उस समय नहीं, हर समय। और यही एक सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एव केवलम। सगुरुः सपिता चापि सा माता बांधवोपि सह। वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो बंधु हमारे नहीं हैं, यदि वो हमें ये शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं कि हरे नाम एव केवलम। यदि हमें कोई व्यक्ति ये नहीं बतलाते हैं कि हरि का नाम ही सर्वस्व है, यही एकमात्र उद्धार का उपाय है, यदि हमें कोई नहीं बताता तो वो ये सब होने के लिए काबिल नहीं है। निःश्वास नहीं विश्वास है, कभी हमारे श्वास निकल जाएंगे उसका उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं रख सकते, किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। कदारुद्धो भविष्यति, कब भविष्य में ये होगा इसके बारे में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कीर्तनीय मतो बाल्याद, बाल्यावस्था से ही कीर्तन करना शुरू करो, क्योंकि हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम का ही कीर्तन किया करो। हरि ही सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एव केवलम। तो हरि सदा उस स्थान में निवास करते हैं यत्र, जहाँ पे भागवता जनाः, जहाँ उनके भक्त जन गायन्ति भक्ति भावेन, बड़े भक्ति भाव से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हरे नाम एव केवलम। और एक श्लोक आपको याद होगा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है उसी तरह का, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, फिर यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, हालांकि वो रहते हैं, मैं योगी जनों के हृदय में नहीं रहता, हालांकि वो रहते हैं, तो मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त सतत मेरा कीर्तन करते रहते हैं, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। तो उसी बात को यहाँ भी दोहराया गया है। अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः, एक बहुत बड़े दुख की बात ये वैष्णव कवि हमें बताना चाहते हैं, और यह कोई साधारण दुख की बात नहीं है। अहो दुखम महादुखम, ये बहुत बड़ा दुख है, और केवल बड़ा दुख नहीं है, जितने भी बड़े से बड़े दुख हैं उनमें से भी सबसे बड़ा दुख है। तरतम ये न्याय दुख, तर दुख तम, सबसे अधिक दुख, सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है? काचायम विस्मृतम रत्न हरे नाम एव केवलम। ये हरि नाम ये एक रत्न है, अनमोल रत्न है, परंतु इस अनमोल रत्न को हम एक कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं, तो इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वाचः गीयताम गीयताम नित्यम हरे नामैव केवलम। तो अपने कानों में यही जाना चाहिए, अपने वचनों से यही निकलना चाहिए और यही हमें गाते रहना चाहिए। क्या गाना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए? हरे नामैव केवलम। तृणकृत्य जगत सर्वम, तो ये सारा जगत जो है ये एक तृण के समान है, एक घास के तिनके के समान है। हालांकि हमें बहुत बड़ा लगता है, हमारे लिए हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़े लगती हैं, परंतु यहां बताया गया है कि सारा विश्व एक घास के तिनके के समान तुच्छ है। और इस तृणकृत्य जगत सर्वम में राजते सकले परम, सकल परम क्या राज कर रहा है? चिदानंदमयम शुद्धम, एक ऐसे वस्तु जो चिदानंद है और शुद्ध है, आध्यात्मिक है, और वो है हरे नामैव केवलम। तो ये हरि नाम ही सबसे शुद्ध वस्तु है, सत्य है, और इसका आश्रय हमें लेना चाहिए। और हरि नाम के संदर्भ में ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह शिक्षाष्टकम इन श्लोकों की रचना की थी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सब तो जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, जो इस कलयुग में अवतरित हुए हैं युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के उद्घाटन के लिए, इस आंदोलन के उद्घाटन के लिए, हरिनाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि उन्होंने इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सारे जगत को सर्वोच्च आध्यात्मिक परिपूर्णता जो कृष्ण प्रेम है वो सुलभ ही प्रदान कराया है, और ये हमारे लिए भी उपलब्ध है अवसर। यदि हम भक्तों के संग में आकर नाम संकीर्तन करेंगे तो हमें भी वही सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, परंतु एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। वो हम सबको सिखला रहे हैं कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए, अपने आचरण से सारे दुनिया को सिखला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन में सदा तल्लीन रहते थे और कभी भी संसार के वस्तुओं में नहीं पड़ते थे। एक इतना ऊंचा उदाहरण उन्होंने सारे विश्व के लिए सामने रखा है कि इसकी तुलना किसी और साधु से नहीं की जा सकती। चैतन्य महाप्रभु कोई साधु नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। तो जब भगवान एक साधु बन जाते हैं तो उनके जैसा और कौन साधु हो सकता है? उनके जैसे भले धर्म का पालन कौन कर सकता है, नाम संकीर्तन कौन कर सकता है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निकट के शिष्यों को अनेक वर्षों तक बहुत गुह्य, गहरे और महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान की। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि उनके अनुयायियों ने यथा षड गोस्वामी आदि अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, हरि भक्ति विलास, गोपाल चंपू इत्यादि, श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, एक भी ग्रंथ की रचना नहीं की। तो ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने जो रचना की वो केवल 8 श्लोक हैं और वो है शिक्षाष्टकम। तो जिस शिक्षाष्टकम का पाठ पठन हम प्रतिदिन करते हैं कि हमें करना चाहिए, वो शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों की रचना की और अपने निकट के जो पार्षद थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इनके समक्ष किया। तो ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने जब इतना ज्ञान सारे दुनिया को दिया, उनके शिष्यों को दिया, उन्होंने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा। उनकी रचना यदि है तो केवल 8 श्लोक हैं जिनको शिक्षाष्टकम कहते हैं। शिक्षा अर्थात शिक्षा, अष्टकम अर्थात 8 श्लोक। 8 श्लोकों में उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं भर दी हैं। तो ये एक कारण है कि चैतन्य महाप्रभु को अन्य कोई ग्रंथ की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन 8 श्लोकों में उन्होंने वो सारा ज्ञान प्रदान कर दिया। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि संक्षेप में जो बात कही जाती है वो हमारे समझ में अच्छी तरह से आ जाती है। और ज्ञान दो तरह से प्रस्तुत किया जाता है, एक सूत्र रूप में, सार रूप में, और दूसरा है विस्तार में। तो वेदांत सूत्र है, इसमें केवल सूत्र रूप में बहुत गहरा आवश्यक ज्ञान दिया हुआ है। फिर व्यास देव जी ने सोचा कि इस सूत्र रूपी ज्ञान का विस्तार भी करना आवश्यक होगा ताकि इस कलयुग के लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो वेदांत सूत्र के ऊपर व्यास देव जी ने एक टीका लिखी और इस टीका का नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम ये वेदांत सूत्र के ऊपर एक स्वाभाविक टीका है। स्वाभाविक क्यों? क्योंकि जिन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम की रचना की, यथा श्रील व्यासदेव। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार ज्ञान को सूत्र रूप में या संक्षिप्त रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है ताकि जो बुद्धिमान लोग हों वो सार संक्षिप्त रूप में जान सकें कि सारा ज्ञान क्या है। तो इन 8 श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो सारा ज्ञान हमें प्रदान कर दिया है। इसलिए और आवश्यकता ही नहीं पड़ी महाप्रभु को और ग्रंथ लिखने की। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के कारण अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर उपस्थित थे तो उन्होंने घोषणा की कि वैसे पांडवों की जीत तो हो चुकी है, युद्ध युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही ये निश्चित था कि पांडवों की जीत होनी वाली है। परंतु जहां कृष्ण है वहां जीत होना है ये तो केवल भक्तों को पता है, जहां कृष्ण है वहां तो विजय होनी ही होनी है। कभी कभी जब भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं ना, तो कभी हरे कृष्ण न कह के हरे कृष्ण कहते हैं, है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कृष्ण कभी हारते नहीं है, जीतते हैं। तो गलती से भी हरे कृष्ण नहीं बोलना चाहिए, वो मात्रा लंबी नहीं है, छोटी है। तो वो हरे कृष्ण, ध्यान से हमें हरे कृष्ण बोलना चाहिए, नहीं तो सुनने वाला सोचेगा कि ये बोल रहे हैं कि कृष्ण हार गए हैं। तो जहां कृष्ण है वहां विजय तो होना ही होना है। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रेय देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय भक्त थे। निमित्त मात्र भव सभ्यसाचिन, कि तुम निमित्त बनो हे अर्जुन, श्रेय तुम्हें जाएगा। आज तक हम सब गुणगान करते हैं अर्जुन की शूरवीरता की, परंतु अर्जुन की शूरवीरता आई कैसे, और सारी जो व्यवस्था थी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में किन के द्वारा हुई थी, वो सब श्री कृष्ण के द्वारा हुई थी। तो इसलिए यहां पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मेरे जो भक्त हैं उनको श्रेय जाना चाहिए, ताकि लोग समझें कि मेरे भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कितने महत्वपूर्ण हैं इस जगत के लिए। भगवान के भक्तों को बहुत प्रसन्नता होती है जब वो भगवान का गुणगान सुनते हैं, और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब वो भक्तों का गुणगान सुनते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रतियोगिता या स्पर्धा चलती रहती है दोनों के बीच में, कभी भक्त जीतते हैं तो कभी भगवान जीतते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं यदि अनेक ग्रंथों की रचना करूंगा तो श्रेय मुझे जाएगा, परंतु मैं चाहता हूं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनको श्रेय जाना चाहिए, केवल मुझे क्यों, आखिर ये मेरे प्रिय भक्त हैं। तो उन्होंने उनको शक्ति प्रदान की जिसके द्वारा उन्होंने ऐसे गुह्य ज्ञान अपने ग्रंथों के द्वारा प्रस्तुत किया जो कि आने वाले कम से कम 10,000 वर्षों तक रहेंगे और सारे दुनिया को मार्गदर्शन करते रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु केवल संतुष्ट थे इन 8 श्लोकों से। और एक बात यह थी कि चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर रहा करते थे अपने नाम संकीर्तन में कि उनको कहां समय मिलता था ग्रंथों की रचना करने के, लिख के बैठना, ये समय नहीं था उनके पास। दिन रात ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बैठ के तरह तरह के श्लोकों का उच्चारण करते थे, हरि नाम का उच्चारण करते थे, श्री कृष्ण के विरह में विविध प्रकार के आध्यात्मिक दिव्य भाव उनके अंदर प्रकट होते थे, जिनको देखकर सारे भक्तगण भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसे अलौकिक अपूर्व जो लक्षण दिखाई पड़ रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर में, वो पहले कभी भी किसी ने भी प्रकट नहीं किए थे। तो इतने गहरे भाव में महाप्रभु रहा करते थे, कभी कभी बाह्य चेतना उनकी खत्म हो जाती थी, वो भूल जाते थे कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, और ऐसी बाह्य चेतना में वो कभी रो पड़ते, कभी हंस पड़ते, कभी कीर्तन करते, कभी दौड़ पड़ते, कभी समुद्र में कूद पड़ते, यमुना जी को समुद्र समझकर कभी कूद पड़े, जगन्नाथपुरी के समुद्र के तट में बालू के किसी छोटे से पहाड़ को गोवर्धन समझकर उसकी ओर भाग पड़े। तो ऐसे महाप्रभु ऐसे लक्षण प्रकट करा रहे थे तो आज तक इतिहास में किसी ने भी प्रकट नहीं कराया है। तो ऐसे भाव विभोर रहते थे महाप्रभु, तो ऐसे प्रेमावेश में बैठ के तरह तरह के ग्रंथों की रचना करना ये उनका भाव नहीं था। वैसे भक्ति के लीलाओं को प्रकट करने के पहले एक शुष्क व्याकरण के अध्यापक की लीला महाप्रभु किया करते थे। उस समय उनका नाम निमाई पंडित हुआ करता था और उनके तरह कोई विद्वान, प्रगाढ़ विद्वान नहीं था कोई। हालांकि वो एक बालक मात्र थे, फिर भी ऐसे विद्वत्ता, ऐसे पांडित्य का प्रदर्शन उन्होंने किया कि सभी लोग हैरान हो गए। बड़े बड़े दिग्विजयी पंडितों को उन्होंने आसानी से हरा दिया वाद में, तर्क की स्पर्धाओं में। परंतु आगे जब भक्त बने तो इस भाव में थे वो, अनेकों के साथ उन्होंने वाद किया और सही जो वेदों का निष्कर्ष है बड़े दार्शनिक तत्वों के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया और ये स्थापित किया कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति ही वेदों का सार है, जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे सुलभ उपाय है हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, सच्चिदानंद विग्रह उनका है, उनका रूप दिव्य है, आत्मा और श्री कृष्ण का एक प्रेम का संबंध है। आत्मा कभी भगवान नहीं हो सकता, कभी था नहीं, है नहीं और भविष्य में नहीं हो सकता। और आत्मा की परिपूर्णता है कि वो अपना प्रेम का संबंध सेवा भाव में श्री कृष्ण के पास के साथ जोड़ ले। तो ऐसे बुनियाद उन्होंने एक बनाई, सारे जो प्राथमिक तत्व हैं वो सब उन्होंने प्रस्तुत किए। इधर उधर जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उनसे प्रमाण रखे, बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया, जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाश आनंद सरस्वती इत्यादि जो भी बहुत बड़े जाने माने विद्वान थे उस समय के। तो उस समय महाप्रभु संकीर्तन तो खूब किया करते थे परंतु कभी कभी बैठ के वाद में लग जाते थे, परंतु आगे चल के रचना नहीं की, वो उनके भक्तों के लिए छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु के जीवन के या उनके लीलाओं के तीन भाग किए जाते हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट लीलाएं कितने वर्षों तक हुई, कितने सालों तक महाप्रभु रहे? 48 वर्षों तक महाप्रभु रहे। पहले 24 साल जो हैं वो आदि लीला कहलाते हैं। 24 साल की आयु में उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। लगभग 16-17 किस्से उस समय भक्ति उन्होंने प्रारंभ की। अनेक वर्षों तक वो भक्तों के साथ नवद्वीप में रहे, नाम संकीर्तन का आंदोलन सब जगह फैलाते रहे। फिर 24 वर्ष के आयु में उन्होंने संन्यास लिया और 24 से लेकर 30 वर्ष की आयु तक ये मध्य लीला है। इस दौरान चैतन्य महाप्रभु थोड़े समय तक जगन्नाथपुरी तो रहा करते थे, अपने भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुआ करते थे। परंतु इन 6 वर्षों में उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, दक्षिण भारत से शुरू होकर फिर पश्चिम भारत में आए और फिर जगन्नाथपुरी लौट के आए, फिर आगे भविष्य में उसके बाद में फिर वो बंगाल होकर वाराणसी, प्रयाग, फिर वृंदावन मथुरा होकर फिर से आए। तो ये मध्य लीला है। मध्य लीला के समय अधिक जोर उन्होंने केवल नाम संकीर्तन के ऊपर दिया और अनेकों को भक्ति के पथ में लाने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किया। प्रचार का भाव उनका था उस समय। जब अंत्यलीला आई, अंत्यलीला 18 वर्षों की है, उन्होंने इसी भाव को जारी रखा। परंतु अंत्यलीला के जो अंत के 12 वर्ष हैं, इन 12 वर्षों में उनका भाव इतना तीव्र और गाढ़ा हो गया, इस समय उन्होंने प्रचार करना भी बंद कर दिया। इस समय प्रचार नहीं कर पाए वो, केवल दिन रात हा कृष्ण कह के अपने भाव में विभोर रहते थे। और इस समय वो केवल अपने निकट के पार्षदों के साथ में रहते, कभी हरि नाम लेते और रात भर, दिन में संकीर्तन करते भक्तों के साथ में, और रात में सोते नहीं थे। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे इन निकट के भक्तों को साथ में लेकर अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करते। उनकी हृदय की वेदना क्या थी? कोई भौतिक बात तो थी ही नहीं कि कहाँ है कृष्ण, कब मुझे कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। तो श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ कर पठन करके वो रस का आस्वादन करते थे। तो कभी रामानंद राय द्वारा विरचित जगन्नाथ वल्लभ नाटका के श्लोकों का उच्चारण करते थे, तो कभी बिल्वा मंगल ठाकुर के कृष्ण कर्णामृत से। इस तरह से महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रात भर ऐसे श्लोकों का उच्चारण करके विशेष रस का आनंद लेते। और उस दौरान ऐसे चैतन्य चरितामृत के अंतिम अध्याय में, अंत लीला के अंतिम अध्याय में, जो 20वां अध्याय है, कविराज गोस्वामी शिक्षाष्टकम का वर्णन करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक ही है शिक्षाष्टकम, प्रार्थनाएं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को बुलाया। और वैसे जब शिक्षाष्टकम की चर्चा होती है तो हम भी इन 8 श्लोकों की चर्चा तो करते हैं अवश्य। शिक्षाष्टकम प्रभु ने स्वयं मुझे याद दिलाया कि कई साल पहले मैंने ये इसी विषय पर प्रवचन दिया था, मैं भूल गया था, कोई याद है? लेकिन अभी फिर मैं याद कर रहा था, क्या है, फिर मैंने 20वें अध्याय से थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत से पढ़ा जाए, क्योंकि अक्सर हम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ते हैं। भगवद गीता का पाठ होता है, श्रीमद् भागवत का पाठ प्रतिदिन होता है, परंतु चैतन्य चरितामृत का पाठ इतना नहीं होता है। तो आइए थोड़ा बहुत सुनते हैं कि कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं। बंगला में है, लेकिन बहुत सरल बंगला है, इसलिए जो हिंदी समझते हैं वो इस बंगला को समझ पाएंगे। और इस दौरान जब कृष्ण कर्णामृत आदि श्लोकों का वर्णन किया करते थे, उस समय उन्होंने शिक्षाश्रम के श्लोकों की बात भी उन्होंने की।
कोनो दिने कोनो भावे श्लोक पठन से श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण।
कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु किसी एक विशेष भाव में ग्रस्त रह जाते थे और रात भर जगकर उन श्लोकों का उच्चारण करते और उनका स्वाद का आनंद लेते।
हर्ष प्रभु कोहिन सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय।
तो एक बार महाप्रभु का ये भाव आया तो उन्होंने कहा, सुनो स्वरूप और सुनो रामानंद राय, मेरे पास आओ, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बतानी है तुम दोनों को। तो क्या महत्वपूर्ण बात बतानी है? नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, कि इस कलयुग में
नाम संकीर्तन ही परम उपाय है।
संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधन सही तो सुमेध पाए कृष्ण रचरण।
संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, यदि इस कलयुग में हमें श्री कृष्ण की आराधना करनी है तो इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करना चाहिए। संकीर्तन अर्थात सम्यक कीर्तन, संपूर्ण कीर्तन, भगवान के कीर्ति का गान। कीर्तन शब्द आता है कीर्ति से, तो जब भगवान की कीर्ति या यश का गान किया जाता है और विशेष रूप से उनके नामों का गान किया जाता है उसे कीर्तन कहते हैं। भगवान के लीला कीर्तन हो सकते हैं, उनके नाम कीर्तन हो सकते हैं, गुण कीर्तन हो सकते हैं, परंतु सब में नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। और जब ये भगवान का नाम मन में लेते हैं, ये बहुत हल्के स्वर में लेते हैं, होठों को न हिलाकर, उसे जप कहते हैं। जब होठों को हिलाते हैं और उच्चारण करते हैं तो उसे कीर्तन कहते हैं, और जब बड़े जोर से करते हैं और भक्तों के संग में आकर करते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन क्यों? सम्यक कीर्तन, परिपूर्ण कीर्तन। भक्तों के संग में जब भगवान श्री कृष्ण के नाम लिए जाते हैं तो उस समय जो हमारे हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो बहुत निराला है, बहुत विशेष है। शीघ्र ही हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि इस कलयुग में यदि किसी को कृष्ण की आराधना करनी है तो नाम संकीर्तन स्वीकार करना चाहिए। सही तो सुमेधा पाए कृष्ण रचरण, तो जो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है सुमेध, जिसकी बुद्धि बहुत शुद्ध है, वो ऐसे कृष्ण के चरणों को आसानी से प्राप्त कर पाएगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु वो प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसः, जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही सर्वस्व है। और श्री कृष्ण एक ऐसे विशेष अवतार लेंगे जिसमें कि वो आकर अपने ही नामों का उच्चारण करते रहेंगे। तो यह है चैतन्य महाप्रभु। फिर आगे महाप्रभु कहते हैं, नाम संकीर्तन होते सर्वानर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। नाम संकीर्तन होते सर्व अनर्थ नाश, नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे अनर्थों का नाश होता है और सर्व शुभ मंगल हमारे जीवन में उदित होता है और कृष्ण प्रेम की लहरें हमारे जीवन में हृदय में बहने लगती हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो पहला श्लोक करते हैं, आप में से कितने भक्तों ने शिक्षाष्टक प्रार्थना आज तक नहीं सुनी है या नहीं पठन किया है, हाथ ऊपर कीजिए। ओ बहुत सारे हैं, अच्छा ठीक है। वैसे तो ये विषय, ये शिक्षाष्टकम विषय इतना गहरा है कि इसके लिए काफी समय चाहिए, परंतु केवल अभी हम संक्षेप में इसका वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम साथ साथ इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है।
चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्।
नहीं वो बाद में आएगा, इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद, चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाले, भव रूपी महान अग्नि को शांत करने वाले, चंद्र किरणों के समान श्रेष्ठ, विद्या रूपी वधू के जीवन स्वरूप, आनंद सागर में वृद्धि करने वाले, प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत के समान सरस, सभी को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण कीर्तन की परम विजय हो। तो ये पहला श्लोक है शिक्षाष्टकम का। तो आइए फिर से श्लोक में आइए। पहला नहीं नहीं पहले श्लोक में। हाँ, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु क्या बताना चाहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन की सदा जीत होती है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए अगली बार याद रखे, जब भी कीर्तन करेंगे हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण कहेंगे, ठीक है, और रामो रामो भी नहीं बोलेंगे, हरे राम हरे राम, रामा नहीं रामो नहीं राम, वो म आधा भी नहीं है, म पूर्ण है परंतु लंबी मात्रा भी नहीं है उसमें। तो खैर, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हरिनाम संकीर्तन का विजय सदैव होता है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इन्होंने इस शिक्षाष्टकम के ऊपर दो ग्रंथ लिखे हैं। एक का नाम है श्री सन्मोदन भाष्य, जिनमें कि उन्होंने बहुत सुंदर सुचारू रूप से इन 8 श्लोकों का विश्लेषण किया है, और एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री भजन रहस्य। इनकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि इस पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण संकीर्तन के 7 विशेष गुण या लक्षण बतलाए हैं, और जीव जब श्री कृष्ण का संकीर्तन करता है तो उसे ये 7 प्रकार के परिपूर्णताएं या सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो कौन से हैं वो सिद्धियां? सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम, हमारी चेतना एक दर्पण या आईने के बराबर है। आप तो जानते हैं कि जब आईने के ऊपर धूल रहती है तो हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, जब आईने को साफ कर देते हैं तो फिर अपने आप को अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो हमारी चेतना भी इस आईने के बराबर है जिसके ऊपर इस समय बहुत धूल जमी हुई है, इस कारण से हम अपने आप को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। आप मेले में गए होंगे जहां तरह तरह के दर्पण रहते हैं, कभी इसके वैसे आकार में, एक तरह के आईने में जाके देखेंगे हम अपने आप को, बहुत मोटे दिखेंगे आप, कभी बहुत दुबले पतले दिखेंगे, कभी बहुत लंबे दिखेंगे। हाँ, बचपन में हम लोग जाते थे बड़े आनंद लेते थे। तो ये ऐसे दर्पण होते हैं जिनमें जिनके सामने खड़े होकर हम जब अपने आप को देखते हैं तो कोई विचित्र ही रूप दिखाई पड़ता है, तो हम लोग बहुत हंसते हैं उस रूप को देखकर। तो और उसके ऊपर धूल भी हो, समझ लीजिए, तो एक विकृत रूप ही हमारा दिखाई पड़ेगा। तो इस समय हमारे चेतना में, चेतना के ऊपर बहुत अनर्थों की धूल पड़ी हुई है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, और इनकी वजह से हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हम आत्मा हैं और हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, परंतु इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं इन अनर्थों के द्वारा। तो जब हम नाम संकीर्तन करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे चित्त का शुद्धिकरण होने लगता है। तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो मानिए हम हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, और धीरे 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 से जैसे क्रमशः धुलाई होती है वैसे वैसे हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हैं कि अरे मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और मैं तो श्री कृष्ण का दास हूं। मैंने तो ये सोचा था कि मैं इस संसार का प्रभु हूं, और कभी कभी लोग मुझे प्रभु बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अपने आप को हमारा अपना परिचय जब देते हैं तो प्रभु कभी नहीं कहना चाहिए, अपना परिचय देते समय दास कहना चाहिए। कभी कभी कई भक्त कहते मेरा नाम फलाना प्रभु है, नहीं, अपने आप का परिचय देते समय सदैव दास कहना है, और अन्यों को का संबोधन जब करते हैं तो प्रभु कहना चाहिए। तो खैर, मैं प्रभु नहीं हूं, मैं दास हूं। जब ये भावना समझ में आती है हमें, तब हमारे सच्चे स्वरूप की पहचान होने लगती है। तो ये एक पहली परिपूर्णता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये हरिनाम संकीर्तन जो है ये पूर्णिमा के चांद के बराबर है। आपको पता है कि चांद की किरणें बहुत शीतल होती हैं और उससे सौंदर्य सब जगह बढ़ जाता है। वैसे जो साधारण कमल पुष्प होते हैं उनको अरविंद बंधु कहते हैं। क्यों? सूर्य को अरविंद बंधु कहते हैं। क्यों ऐसे? अरविंद अर्थात कमल, सूर्य के किरणों के कारण जो अरविंद है या कमल है वो खिलने लगता है। परंतु ऐसे भी कोई कमल पुष्प होते हैं जो चांद के किरणों में खिलते हैं, सूर्य की किरणों में नहीं खिलते। तो ऐसे कोई कमल पुष्प है जिनका नाम है कैरव। तरह तरह के श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपके तरह तरह के फलों फूलों के आपको नाम मिलेंगे, परंतु ये बॉटनी का क्लास नहीं है इसलिए मैं इसमें ज्यादा आप चर्चा नहीं करूंगा। परंतु श्रीमद् भागवत पढ़ने से आपको प्रत्येक विषय के बारे में जानकारी होगी, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान, जो विषय चाहिए आपको श्रीमद् भागवत में मिल जाएगा। तो खैर, कैरव ये भी एक फूल होता है, कमल कमल परिवार का होता है। ये कमल परिवार बहुत बड़ा है। हम कभी कमल शब्द का प्रयोग करते हैं सोचते हैं कि ये एक फूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमल फूल तो एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं। कोई दिन में खिलते हैं, कोई रात में खिलते हैं, कोई सफेद रंग के होते हैं, कोई लाल रंग के, कोई नीले रंग के, कोई पीले रंग के, ऐसे अलग अलग कमल पुष्प होते हैं। तो ये एक तरह का कमल है कैरव, जो रात में चांद की किरणों में बहुत खिलता है। तो श्रेय अर्थात एक ये वरदान है, मांगल्य है। तो जब ये हरिनाम संकीर्तन जीव करता है तो हरिनाम संकीर्तन मानो एक ऐसे चांद की किरणें हैं जब वो संकीर्तन करने वाले जीव के अंदर मंगल का वितरण करते हैं। तो सच्चा जो भाग्य है उसका उदय होता है। तो सच्चा भाग्य उदय तो हरिनाम संकीर्तन से होता है। हमारे जीवन में सच्चा मंगल, मंगले भ्योपि मंगलम हम गा रहे थे ना, तो ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा होता है। तीसरी बात, विद्या वधु जीवनम। वधु का मतलब क्या है? वर और वधु आपको पता है, तो यहां वधु कहां आ गई? तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण परम पुरुष हैं इसलिए वो वर हैं, और उनके बारे में जो विद्या है, जो ज्ञान है, विद्या है ये स्त्रीलिंग है,
इसलिए ये इसको वधु कहा गया है। जो जो दिव्य ज्ञान है श्री कृष्ण के संदर्भ में, यह विद्या वधु। तो ये विद्या की परिपूर्णता क्या है? भक्ति। जब हम विद्या प्राप्त करते हैं तो विद्या प्राप्त करने के बाद हम श्री कृष्ण के भक्त बनते हैं, अन्यथा हमारी विद्या अपूर्ण है। तो विद्या की पूर्णता भक्ति है, और भक्ति एक वधु है, वो पत्नी है श्री कृष्ण की। देखिए कितनी सुंदर बात है, विद्या वधु जीवनम। तो इस तरह से हरि नाम के द्वारा हमारे हृदय में भक्ति का उदय होता है, क्योंकि हरि नाम श्री कृष्ण ही है, और श्रीमती राधा रानी उनके कृपा से हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जग जाता है। फिर आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये चौथा लक्षण है। जब हम हरि नाम लेने लगते हैं तो ये परिपूर्णता प्राप्त होती है कि पहली बात तो ये है कि आनंद एक अम्बुधि या समुद्र की तरह विशाल हो जाता है। इस संसार का जो तथाकथित आनंद है वो केवल एक बूंद के बराबर है, लेकिन नाम संकीर्तन करने से जो आनंद मिलता है वो समुद्र के बराबर है। भक्ति का आनंद बड़ा विशेष होता है, इसलिए जो प्रवचन में आते हैं और प्रवचन में आके सोते भी हैं, फिर भी उनके चेहरे में कितना आनंद दिखाई देता है। घर में जब सोए हुए होते हैं तो ऐसे आनंद नहीं दिखाई पड़ता, जब रेलगाड़ी में बसों में इधर उधर जाते हैं तो उदास चेहरे से ऐसे रहते हैं, परंतु जब कथा में आते हैं या जप में बैठते तब नींद आती है, तो ऐसी गहरी नींद आती है, बड़े आनंद से चेहरे में प्रसन्न चित्त रहता है उसका। तो सोते हुए भी इतना आनंद आता है तो जागते हुए कितना आनंद होना चाहिए। तो सचमुच जब हम भक्ति करते हैं तो आनंद का वर्धन होता है, परंतु ये बूंद का वर्धन नहीं है। एक बूंद का वर्धन करने से कितना हो जाएगा, बस हथेली में थोड़ा बहुत आ जाएगा हमारा, लेकिन ये एक समुद्र है, और ऐसा समुद्र है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, इसलिए तो उसे समुद्र कहा जाता है। जब हम समुद्र के बीच में रहते हैं तो सब जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, जमीन कहीं नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे लगता है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो आनंदाम बुद्धि वर्धनम, तो ऐसे नाम संकीर्तन लेने से आनंद बहुत होने लगता है, ये एक परिपूर्णता है। पांचवी बात है प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, और प्रतिपद प्रति कदम जैसे जैसे हम भक्ति करते रहते हैं वैसे वैसे एक नवीन रस का स्वाद मिलता है हरि नाम लेते समय। भले बहुत गहरा हमारा अनुभव इस बारे में न हो, परंतु एक इसका आभास तो है कम से कम। जब हम कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कभी कभी जप करते हैं, अचानक बहुत एक अच्छा लगता है, बहुत आनंद सा आने लगता है, तो एक झलक मात्र हमें दिखाई पड़ती है शुरुआत के स्तरों में भी। तो जब आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे हर नाम संकीर्तन करते समय हर कदम एक नवीन रस का आस्वादन करने का मौका हमें मिलेगा। और नाम संकीर्तन का रस कभी घिसा पिटा नहीं होता। प्रभुपाद जी एक बार कहा, ने किसी से पूछा कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा और महामंत्र का जप करने के लिए और कीर्तन करने के लिए। तो हम लोग कीर्तन करते हैं किस उद्देश्य से, कि और कीर्तन करने का लाभ हमें मिल जाए। और कीर्तन क्यों करते हैं, और भी कीर्तन करने का अवसर मिल जाए, क्योंकि साधन और साध्य एक ही हैं, अंतर नहीं है। इसलिए यहां जो रस की प्राप्ति होती है वो सदा ताजी रहती है। और फिर सर्वात्म स्नपनम, अंतिम
ये आत्मा को मानिए स्नान कर दिया, ये हरि नाम के स्नान, हरि नाम के द्वारा, अमृत के द्वारा आत्मा का स्नान हो चुका है, अर्थात आत्मा अब पूरी तरह से डूब गई है समुद्र में, कृष्ण प्रेम की अवस्था प्राप्त हो चुकी है, अब आत्मा को श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पता है, कृष्ण और कृष्ण नाम, जैसे चैतन्य महाप्रभु अंत लीला में कर रहे थे, कह रहे थे। तो ये है पहला श्लोक, बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु इसकी व्याख्या करते हैं। Can care, I don't think we have the time. We'll see just briefly. तो खैर फिर आगे दूसरा श्लोक बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, तो इसका पाठ करते हैं, साथ में करते हैं सभी पाठ। नाम नाम कार्य बहुधा ज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः। हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है, जिनका किसी समय भी स्मरण किया जा सकता है। हे भगवन, आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उन नामों से प्रेम ही नहीं है। वैसे पहले श्लोक में जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अन्य सात श्लोकों में इन बातों का विस्तार है, तो ऐसा समझ लीजिए कि अन्य जो सात श्लोक हैं शिक्षाष्टकम के, वो पहले श्लोक के विस्तार हैं या टीका हैं। तो कोई विशेष बात है पहले श्लोक की जिसकी व्याख्या उस श्लोक में की जाती है। फिर चेतो दर्पण मार्जनम की व्याख्या इस नाम नाम अकारी बहुधा श्लोक में पाई जाती है। तो महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके कितने सारे नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद आदि, और इन समस्त नामों में आपने आपके समस्त शक्तियां प्रदान कर दी हैं। केवल आपके नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में सारी सिद्धि प्राप्त हम कर सकते हैं, परंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आपके नामों का उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं, अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है आपके नामों में मेरे हृदय में। काचायम विस्मृतम रत्न हरे नाम एव केवलम। तो ये भाव महाप्रभु का है, ऐसे सत्य नहीं है। महाप्रभु एक दीन भाव स्वीकार करके ऐसे बोल रहे हैं कि आपका नाम इतना शुद्ध है, आनंद प्रदान करने वाला है, परंतु देखिए मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे हृदय में तनिक भी कोई राग मतलब आसक्ति, मराठी में राग मतलब गुस्सा होता है, वो राग नहीं, तो तनिक भी मेरे हृदय में आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। तो ऐसे अपने हृदय की वेदना व्यक्त करते हैं चैतन्य महाप्रभु। आप तो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि वैदिक ज्ञान समझने के लिए तीन कदम होते हैं। पहला कदम है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध ज्ञान के द्वारा हम समझ लेते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, सृष्टि क्या है और हमारा परस्पर संबंध क्या है। जब हम ये समझ लेते हैं तो इस ज्ञान के अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं उसे अभिधेय कहते हैं, और भजन क्रिया ऐसे करने के बाद फिर जो फल की प्राप्ति होती है वो है प्रयोजन, जो कृष्ण प्रेम है। जो तो पहले पांच श्लोक हैं, वैसे तो अभिधेय आठों श्लोक हैं, उनमें से पहले पांच श्लोक संबंध ज्ञान से संबंधित हैं और अंतिम तीन श्लोक ये प्रयोजन तत्व से संबंधित हैं। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने शोक ग्रस्त कर रहे हैं कि देखो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। तो महाप्रभु हमें सिखला रहे हैं कि हमारी भावना कैसे होनी चाहिए। जब हमें कोई पूछा जाए कि जब कैसे चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया एक दृष्टि से हाँ ठीक है, कहने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन हरिनाम लेने के लिए अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। नाम अपराध से बढ़ के नाम अभास को पार करके हमें शुद्ध नाम लेना है, तब जाके हम नाम का आस्वादन, रस के का आस्वादन कर पाएंगे। फिर महाप्रभु तीसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।
त्रिनादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः।
स्वयं को तृण से भी छोटा समझते हुए, वृक्ष जैसे सहिष्णु रहते हुए, कोई अभिमान न करते हुए और दूसरों का सम्मान करते हुए सदा श्री हरि का भजन करना चाहिए। तो ये चार आवश्यकताएं हैं। यदि हमें श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण सतत करना है तो ये चार गुण हमारे अंदर आने चाहिए। पहली बात कि एक तृण से भी अधिक नम्र, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील, अन्यों को मान देना और अपने लिए कोई मान की अपेक्षा नहीं करना। बंगाल में एक कवि हुआ करते थे, तो उन्होंने वैष्णवों के बारे में बहुत सुना था, खास करके नासिक के वैष्णवों के बारे में तो सुना ही होगा। तो उन्होंने सोचा कि इतना मैंने सुना है कि ये वैष्णव कितनी अच्छी बात है, तो चलो देखें तो सही ये वैष्णव लोग क्या करते हैं। तो वैष्णवों के संग में आए और थोड़ा बहुत सुनने लगे, तो वैष्णवों में शिक्षाष्टकम की चर्चा तो हो रही थी और त्रिनादपि सुने चैन श्लोक को जब पहुंचे, फिर ये श्लोक सुनकर फिर उनका उनके मन में एक विचार आया, फिर उन्होंने एक श्लोक लिखा। वैष्णव हुआर मोने छिलो शाह त्रिनादपि श्लोक सुने पड़े गलो बाद। उन्होंने कहा बहुत चिरकाल से मेरी आशा थी कि मुझे वैष्णव बनना चाहिए, वैष्णवों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जब वैष्णवों के संग में आया और मैंने ये त्रिनादपि श्लोक पढ़ा तो मैंने कहा भूल जाओ इसको, ये हमारे लिए नहीं है। नम्र बनो, सहनशील बनो, मान की अपेक्षा नहीं करो, अन्यों को सम्मान दो, भाई ये तो बहुत मुश्किल है, हमारे लिए नहीं है। तो खैर ये वैष्णवों के गुण होते हैं, और ऐसे वैष्णवों के गुण के साथ युक्त होकर जब हम हरि नाम लेते हैं तो नाम की रुचि हमारे अंदर बढ़ती रहेगी। तो हमें याद रहना चाहिए कि हमारे व्यवहार में और हमारे आध्यात्मिक प्रगति प्रगति में बहुत गहरा संबंध है। ऐसे नहीं कि हम कहें कि हम तो जप कर रहे हैं ना, 32 माला रोज कर रहे हैं, तो हमारा व्यवहार ऐसे वैसे भी हुआ तो उसमें क्या समस्या है। परंतु नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने हमारे मनोभावना हमारे व्यवहार के ऊपर बहुत जोर दिया है। वैष्णव अपने व्यवहार से पहचाना जाता है, केवल इससे नहीं कि वो कितने माला करता है। माला करना अच्छी बात है, परंतु माला करते करते ये भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर घमंड आ गया कि देखो मैं 32 माला 64 माला करता हूं, मैं कभी भी जप करते समय सोता नहीं हूं, अरे वो देखो भक्त सोता रहता है,
लेकिन मैं कभी नहीं सोता। तो फिर ऐसे घमंड आ जाए तो फिर नाम का रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं नम्र होना चाहिए। ठीक है, अगली बात। फिर ये चौथा श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयी। हे जगत के ईश्वर, मैं धन, अनुयायी, स्त्रियों या कविता की इच्छा न रखूं। हे प्रभु, मुझे जन्म जन्मांतर में आपसे ही अकारण प्रेम हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो महाप्रभु चाहते हैं अहैतुकी प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ न हो। भगवान से हम कुछ चाहते नहीं हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो व्यवसाय करने के लिए भगवान के साथ नहीं जाते। जब भगवान के सामने आते हैं अपना शॉपिंग लिस्ट लेकर नहीं आते कि भगवान मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। महाप्रभु कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, तरह तरह की प्रशंसा भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। यहां तक कि मुझे मुक्ति या मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? वो कहते हैं जन्मनी जन्मनी, अनेक जन्मों तक मुझे केवल यही चाहिए, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से भी वो मुक्ति नहीं चाहते हैं। भगवान तो अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान कर ही देते हैं, वो तो दूसरी बात है, परंतु भक्त कभी चाहता नहीं है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे जन्म के मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला दीजिए। शुरुआत में हम ऐसे करते हैं, परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो महाप्रभु जैसे प्रार्थना करते हैं। यदि आपकी इच्छा हो कि मैं सदैव यहां भौतिक सृष्टि में रहूं, मैं तैयार हूं। यदि आपकी सेवा के लिए ये अनुकूल रहेगा तब तो। ऐसे महाप्रभु ने कितनी ऊंचे शिक्षाएं दी हैं इस श्लोक में, और आप देखेंगे कि प्रत्येक श्लोक में शिक्षाओं का स्तर और गहराई जो है वो बढ़ती जाती है। तो आगे पांचवें श्लोक में हम देखेंगे।
अयि नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवां बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूले सदृशं विचिन्तय।
हे नंद के पुत्र, इस दुर्गम भवसागर में पड़े हुए मुझ सेवक को अपने चरण कमलों में स्थित धूलि कण के समान समझकर कृपा कीजिए। तो महाप्रभु की भावना देखिए। हे प्रभु, मैं एक पतित जीव हूं, मेरा पतन इस भवसागर में हो चुका है, मैं आपके कृपा पात्र हूं, आपके कृपा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं बिल्कुल सक्षम नहीं हूं मेरी रक्षा के लिए, मेरे उद्धार के लिए, इसलिए आप कृपा करके मेरा उद्धार कर दीजिए इस दुर्गम भीषण भयंकर भवसागर से, और आपके चरण कमलों में एक धूलि के कण के समान मुझे आप रख दीजिए। तो भगवान का भक्त भगवान के धाम में जाकर भी कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनना चाहता है कि मैं जाके माता यशोदा बनूंगी, मैं जाके नंद महाराज बनूंगा, मैं जाके सुवल सखा बनूंगा। नहीं, वहां जाकर भी महाप्रभु का भाव है गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दासः। तो यहां पर भी वही भावना रहनी चाहिए
कि हम वैष्णवों के दासों के दासों के दास हैं। एक बार हमारे मंदिर में कोई आए थे, हम हमसे मिले, हम मिस्टर दास से मिलना चाहते हैं। हमने कहा यहाँ सब मिस्टर दास हैं। तो और कोई बताए, और कोई पूरा नाम बताइए। तो हमारी पहचान ही यही है, हम दास हैं। इसलिए, और केवल दास नहीं, दासों के दासों के दास। आध्यात्मिक जगत में कितना, जितना निम्न हमारा स्थान होगा उतना ही ऊंचा हमारा स्थान होगा। इसलिए सच्चे जो सबसे अच्छे भक्त होते हैं वो अपने आप को निम्न से निम्न श्रेणी में मानते हैं। वैष्णव कभी ये नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं इत्यादि। तो महाप्रभु का भाव देखिए कितना ऊंचा भाव है ये। हाँ, छठा श्लोक।
नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
हे प्रभु, कब आपका नाम लेने पर मेरी आंखों के आंसुओं से मेरा चेहरा भर जाएगा, कब मेरी वाणी हर्ष से अवरुद्ध हो जाएगी, कब मेरे शरीर के रोम खड़े हो जाएंगे, कब वो दिन आएगा, ये प्रश्न भक्त पूछता, ये उसकी लालसा रहती है। भक्त को भी लोभी होना चाहिए, परंतु धन के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, परंतु इसके लिए। कब वो दिन आएगा जब मैं मेरे आंखों से प्रेम के आंसू निकलेंगे, ये हमारे लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो हमारे पुरानी जो आदतें हैं या भावना है वो व्यक्त होंगे, लेकिन हमें अपने आप को रोकना चाहिए। नहीं नहीं, वो कब वो दिन आएगा जब मैं सुखी हो जाऊंगा मेरे भौतिक जीवन में, नहीं। चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चल के हमें सोचना चाहिए कब वो दिन आएगा। नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा, जब अश्रुधारा मेरे आंखों से होगी, किस लिए? मेरे पैसे चोरी हो गए उसके लिए नहीं, कृष्ण प्रेम में, सच्चे कृष्ण प्रेम में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधारण भावुकता से, भौतिक भावुकता से उत्पन्न होने वाले आंसू, उन आंसुओं की बात नहीं कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वैसे दुनिया में कई लोग हैं जो आसानी से ही रो पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो शुद्ध भक्त बन गए। जिन आंसुओं की चर्चा यहां हुई है वो आंसू है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद प्राप्त हो जाता है। और जो झूठे झूठे आंसू होते हैं, जो प्राकृत सहजीय इत्यादि करते हैं, ऐसे ब्रज में वृंदावन में कई लोग मिलते हैं, नकल करते हैं झूठे कृष्ण प्रेम के, और ऐसे भाव, ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मानो कि बहुत भाव विभोर हो चुके हैं। तो प्रभुपाद जी कैसे, ऐसे आंसू तो वेदों के सिद्धांतों को धो डालते हैं। एक बार हुआ ये, वैसे ये घटना ज्यादा हम नहीं बताते हैं, परंतु अब बता ही देते हैं। वृंदावन में जब प्रभुपाद जी थे उस समय, वृंदावन मंदिर का उद्घाटन अभी अभी हुआ था, धनंजय प्रभु वहां के अध्यक्ष थे। तो स्वयं धनंजय प्रभु ने बताई ये बात कि एक कोई व्यक्ति आया, भगवान के सामने दर्शन ले रहा था, अचानक हा हा करके जोर से रोने लगा, जमीन पे गिर पड़ा, हाथ पैर जो है हिलाने लगा। तो सारे भक्त थे, नए नए भक्त थे सब, वो भी विदेश से आए हुए, सोचा करे ये कि बहुत क्या भाव है इसका, हो सकता है पता नहीं क्या है। तो धनंजय प्रभु ने जाके प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, ये एक आदमी आया है, वो जमीन पे पड़ा है, वो हाथ पैर जो है फटफटा रहा है, और वो हा कृष्ण कह रहा है,
वो बहुत रो रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, सभी लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या वो सच्चा भक्त है? तो प्रभुपाद जी ने एक आदेश धनंजय प्रभु को दिया, वैसे भरी सभा में कहने में थोड़ा शर्म, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा इसलिए कह सकते हैं। उन्होंने कहा परीक्षा करो उसकी। कैसे परीक्षा कर सकते हैं? जाके उसे जोर से लात मारो। प्रभुपाद जी लात मारो? हाँ हाँ, जाके लात मारो। तो एक आज्ञाकारी शिष्य होने के नाते धनंजय प्रभु वहां पर आए, और धनंजय प्रभु को आपने देखा होगा, 6 फुट ऊंचे हैं, चौड़े भी हैं काफी। तो आए सबके सामने, कस के लात मार दी उसको, और वो व्यक्ति कहा हा कृष्ण कह के रो रहा था, तथा अचानक उसका रोना बंद हो गया, खड़ा हो गया, बहुत जोर से विरोध करने लगा, चिल्लाने लगा, आप मुझे ऐसे क्यों, आपने मेरे साथ ऐसे क्यों व्यवहार किया? तो प्रभुपाद जी ने पहले ही धनंजय प्रभु को बताए रखा था कि यदि वो गुस्सा होगा, उसको गुस्सा आएगा, तो समझ लो कि वो नकली है, ढोंग कर रहा है। और ऐसे ढोंगियों को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि सारे समाज को पदभ्रष्ट करते हैं, सारे दुनिया को गुमराह करते हैं, वो धोखा कर देते हैं सारे दुनिया को। और ऐसे लोगों की वजह से कई मासूम लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो इसलिए वैसे आंसू नहीं, यहां महाप्रभु उन आंसुओं की बात करते हैं जो हृदय के भाव से उत्पन्न होते हैं, स्वाभाविक रूप से, आध्यात्मिक भाव से। तो ये 6ठा श्लोक है। तो पहले 5 श्लोकों में साधन भक्ति का वर्णन है। आप में से जो नए भक्त हैं, कोई बात नहीं, शायद आप साधन भक्ति क्या है आप नहीं जानते हो, लेकिन जो पुराने भक्त हैं आपके लिए बताएं कि पहले 5 श्लोक साधन भक्ति से संबंधित हैं, और ये जो भक्त, ये जो श्लोक है 6ठा, ये भाव भक्ति से संबंधित है। इसमें भाव व्यक्त होते हैं, जैसे आंखों से आंसू आना, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाना, और रोंगटे खड़े हो जाना इत्यादि। तो इन 8 सात्विक विकारों का वर्णन इस श्लोक में महाप्रभु करते हैं। तो ये भाव भक्ति के स्तर के लक्षण हैं, बहुत ऊंचा स्तर है, प्राय परिपूर्णता का स्तर है, कृष्ण प्रेम से थोड़ा ही नीचे है ये स्तर। तो महाप्रभु कहते हैं कि कब वो समय आएगा जब ऐसे लक्षण मुझ में प्रकट हो जाएंगे। अगला श्लोक, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। श्री कृष्ण के विरह में मेरे लिए एक क्षण एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। आंखों में जैसे वर्षा ऋतु आई हुई हो, आई हुई, और यह विश्व एक, और यह विश्व एक शून्य के समान लग रहा है। थोड़े अनुवाद में थोड़ा कुछ ही है, और यह विश्व एक शून्य के समान है। ने एक मिनट, हाँ। तो यहां पर भाव भक्ति में जो विरह है, और प्रेमा भक्ति में जो विरह की भावना होती है, उसका वर्णन यहां महाप्रभु कर रहे हैं। तो इस 7वें और 8वें श्लोक में प्रेमा भक्ति का वर्णन, जो सबसे ऊंचा स्तर है, उसका वर्णन महाप्रभु कर रहे हैं। श्री कृष्ण के विरह में क्या होता है कि सारा जगत शून्य दिखाई पड़ता है, कि कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, के बिना सब कुछ सूना सूना लगता है। ऐसे लगता है कि जगत खाली खाली है, जगत का क्या मतलब है। और फिर भक्त जो है इधर उधर जाता है, कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण। तो यह बहुत ऊंचा स्तर है। विरह किसके प्रति होता है? जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम होता है। प्रेम नहीं हो किसी के प्रति तो विरह क्यों होगा? तो जब श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है तब विरह की भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि भक्तों के अंदर ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, सारा जगत शून्य दिखाई पड़ता है उसको। हाँ, फिर आठवां, ये भी प्रेमा भक्ति का लक्षण है, सर्वोच्च स्तर है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमां अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। उनके चरणों में प्रीति रखने वाले मुझ सेवक का वह आलिंगन करें या न करें, मुझे अपने दर्शन दें या न दें, मुझे अपना माने या न माने, श्री कृष्ण ही मेरे प्राणों के स्वामी हैं, कोई दूसरा नहीं। ये है संपूर्ण शरणागति। संपूर्ण शरणागति में जो प्रेमावस्था की चरम सीमा है उसमें भक्त प्रार्थना ये करता है, अभी मैं आपको कभी त्याग नहीं सकता, चाहे आप मुझे स्वीकार करें या ठुकरा दें, आप मुझे आलिंगन करें या दूर भगा दें, मैं नित्य आपका सेवक हूं और आपकी सेवा में ही रहूंगा। तो बिना कोई शर्त रखे हुए निस्वार्थ, शत प्रतिशत निस्वार्थ सेवा जब भगवान की होती है तो ये प्रेमा भक्ति में जब भाव इतना तीव्र हो जाता है तो इसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने इन आठ श्लोकों के द्वारा प्रारंभिक भक्ति की अवस्था से लेकर भक्ति की चरम सीमा के अवस्था का वर्णन किया है। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी अपने विवृत्त नाम की टीका में बहुत सुंदर रूप से व्याख्या की है। वैसे यह तत्व, यह विषय तो बहुत गहरा है, बहुत गुही है, परंतु हमने थोड़ा संक्षेप में एक ऊपर ऊपर से इसका परिचय देने का प्रयास किया है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, नित्य पठनीय हैं हमारे लिए। दूसरे शब्दों में प्रतिदिन शिक्षाष्टकम का पठन हमें करना चाहिए। श्रील भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि स्तव पाठ या स्तुति पाठ हमें करना चाहिए प्रतिदिन। जो प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, जो शास्त्रों में पाए जाते हैं, जो महान भक्तों ने रचना किए हैं, उनका पाठ करने से हमारे लिए ये बहुत भक्ति वर्धक हो जाते हैं। और मृत्यु के समय हमें ऐसे प्रार्थनाओं को याद करना चाहिए, हरि नाम को याद करना चाहिए, जैसे कि गजेंद्र ने किया था। गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म में बहुत सारे ऐसे प्रार्थनाओं का पठन किया था और अब हाथी के शरीर में होते हुए भी भगवान के कृपा से पूर्व जन्म में जो प्रार्थना करते थे वो याद आए और इसलिए भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो प्रभुपाद जी हम सबको आदेश देते हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण स्तवों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, प्रतिदिन इनका पाठ करना चाहिए। और कुछ भी नहीं हो तो कम से कम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का तो पाठ और उच्चारण निश्चित करना चाहिए। क्षमा कीजिए, बहुत देर ले ली हमने, 9:30 बज गए, फिर भी आप इतनी शांति से यहाँ बैठे रहे, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम धन्यवाद देते हैं आप सबको कि आप आपका समय निकाल कर यहाँ आए, और आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से यहाँ राधा मदन गोपाल मंदिर में आप सबकी भक्ति तीव्रता से चलती रहे। यहाँ शिक्षाष्टकम प्रभु और अन्य भक्तों के साथ आप यहाँ पर हैं, कृपया उनकी सहायता कीजिए, एकजुट होकर और भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को और बढ़ाइए। इतनी प्रगति हो गई है यहाँ पर, ये देख के इतने प्रसन्नता हो रही है, तो और आगे इस आंदोलन को यहाँ नासिक में बढ़ाइए और नासिक के नागरिकों को सब कृष्ण भक्ति का संदेश पहुँचाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हम पर पूज्य महाराज जी का बहुत धन्यवाद देंगे और यही अनुरोध करेंगे कि शिक्षाश्रम जो उन्होंने बहुत ऊपर ऊपर से समझाया है उसको और डीप में समझाने के लिए यहाँ पे आते रहे और हम सबको उनका संग प्राप्त होते रहे। और विशेष रूप से कल महाराज जी सुबह भागवतम क्लास भी देने वाले हैं, तो सब भक्तों से अनुरोध है 8 बजे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो महाराज जी का प्रवचन भी आपको प्राप्त होगा, उनका संग भी प्राप्त होगा। तो हम महाराज जी से फिर के धन्यवाद देंगे और याचना भी करेंगे कि वो शिक्षा आश्रम डिटेल में लेने के लिए अगली बार यहाँ पे जरूर पधारिए। 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और कल का विषय रहेगा कुंती महारानी की शिक्षाएं, जो भागवतम का एक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण भाग है, तो उसके ऊपर उनका प्रवचन रहेगा। और जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार आए हैं उनको हम निवेदन करते हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाइए।